गांधी साहब से मेरा सवाल यह है कि हमारा मजहब हमें एक जाब्ता हयात देता है और उसके डूज एंड डोंट्स हम पर लाजम करार दिए गए हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस पर अमल करें। अच्छा, एक और चीज जो हमारे लिए बहुत मोहतरम है वो है हमारा मुल्क रियासत। अगर इन दोनों के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए तो क्या किसी एक को दूसरे पे प्रायोरिटी होनी चाहिए? मैं छोटा सा सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहां पे कि नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे हमारे यहां बहुत सी वायलेशंस होती हैं ह्यूमन राइट्स की, सच की, और देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, आप जानते ही हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे सारी वायलेशन करूं, आखिरत में मेरी पकड़ हो जाए और दुनिया में मुझे वाह वाह मिल जाए कि जी उसने बड़ा हीरो बन गया, वो कौम के लिए बड़ी कुर्बानी होती है।
जी, बहुत शुक्रिया जी जावेद साहब।
हम जिस दीन को मानने वाले हैं उसमें ईमान के कुछ लाजमी तकाजे बयान किए गए हैं, उनमें से एक बड़ा अहम तकाजा क्याम बिल किस्त है, यानी मुसलमानों से अल्लाह ताला ने यह तकाजा किया है कि अगर तुम ईमान रखते हो तो तुम्हें हक और सच्चाई का आलमबरदार होना चाहिए। ये जो तकाजा है ईमान का, इसको दो पहलुओं से कुरान ने बयान किया है, एक सूरह निसा में, एक सूरह मायदा में। सूरह निसा में इनफरादी मामलात के हवाले से बयान किया है और उसके अल्फाज ये हैं कि तुम सच्चाई की गवाही देने वाले बनकर रहो, कवामीन बिलकिस्त शोहदा लिल्लाह, यानी सच्चाई की गवाही देने वाले बन के रहो। थोड़े से फर्क के साथ यही अल्फाज हैं जो मायदा में और निसा में दोहराए गए हैं। उसके बाद यह बताया है कि अगरचे ये गवाही सच्चाई की तुम्हें अपने घर वालों, अपने वालदैन, अपने आइज़ा अकरबा के खिलाफ देनी पड़े। दूसरी जगह यह कहा है कि ये तुम्हें सच्चाई की गवाही देनी है अगरचे ये तुम्हें अपने कौमी मफादात के बरक्स किसी दुश्मन के हक में देनी पड़ जाए। उसके अल्फाज हैं वला यजरिमन्नकुम शनानो कौमिन अल्ला तादिलू, तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी भी इस पर आमादा न करे कि तुम इंसाफ के खिलाफ बात कर डालो। ये दिलू, इंसाफ की बात करो हर हाल में, होवा अकरब तकवा।
क्या ये मुमकिन है आजकल के जमाने में प्रैक्टिकली?
देखिए, अल्लाह का हुक्म ये है, हर बंदे को इसके लिए तैयार होना चाहिए। ये हुक्म मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है, ये फौज के एक सिपाही के लिए भी है, जर्नैल के लिए भी है, ये कमांडर इन चीफ के लिए भी है, ये वजीर आजम के लिए भी है, ये सदर ममलकत के लिए भी है। अगर मुसलमान हैं तो हम कायम बिलकिस्त होकर रहेंगे और क्याम बिलकिस्त का जब मुतालबा सामने आ जाए, यानी सच्चाई की गवाही देने का, इसके मुकाबले में ना मां है, ना बाप है, ना कोई कौमी मफाद है, कोई चीज नहीं। इसके लिए जान दे देना ये बहुत बड़ी सादत है और ये हकीकी शहादत है।
लेकिन
इस वजह से ये समझ लेना चाहिए कि ये दीन इस तरह के कंप्रोमाइज का दीन नहीं है। इसमें तो ये बता दिया गया है कि ईमान के बाद अच्छा अमल, और अगर कोई ऐसा मौका आ जाए कि जिस वक्त आपको सच्चाई के मुकाबले में कोई और चीज नजर आ रही हो तो वो मां बाप भी कोई हकीकत नहीं रखते। यानी मुल्क तो उसके बाद ही आएगा ना, सबसे बड़ा जो ताल्लुक आपका है वो आपके मां बाप के साथ है, आइज़ा अकरबा के साथ है, करीबी लोगों के साथ है। तो मुल्क हो, कौम हो, ये सब सच्चाई के ताबे हैं। इनमें से कोई चीज सच्चाई, और जिसको कुरान ने कहा ना कि तुम कायम बिलकिस्त हो जाओ, यानी तुम्हारा काम यह कि इंसाफ पर खड़े होना है तुमने, शुहदा लिल्लाह, अल्लाह के लिए सच्चाई की गवाही देनी है। तो ये इस्लाम के बुनियादी मुतालबात में से है, ईमान के बुनियादी मुतालबात में से है। इस वजह से इसमें तो कोई कंप्रोमाइज का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी ये है कि हमारे यहां लोग जो चाहे कहते रहे, जंग जदाल, देखिए ना, एक बहुत बड़ा मसला ये होता है जिसको आप सिक्योरिटी, दिफा, जंग जदाल कहते हैं, उसके मामले में भी ये है कि उसकी बुनियाद कोई मुल्क नहीं है, कोई कौम नहीं है, कोई मजहब नहीं है। उसकी बुनियाद क्या है? जालिम के खिलाफ इकदाम करना। तो गोया वहां पर भी अदल और जुल्म ये है जो मौजू बनेगा। इसके सिवा किसी इंसान की जान लेने की भी आपको इजाजत नहीं है। यानी आप मजहब की बुनियाद पर, मुल्क की बुनियाद पर, कौम की बुनियाद पर, अपने किसी तासुब की बुनियाद पर किसी की जान नहीं ले सकते। जान लेने की बुनियाद क्या है कि क्या वो शख्स किसी दूसरे के खिलाफ जान लेने का इकदाम कर चुका है या फितना और फसाद बर्पा कर रहा है। इसके सिवा कुरान मजीद ने क्या लाफानी अल्फाज हैं जिसमें इसको बयान किया है, और ये कहा है कि हमने ये बात हमेशा से लिख रखी है کہ کسی جان کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، کسی جان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو یا وہ فساد برپا کرنے کے لیے نکل گیا ہو. تو اس طرح گویا جان کی حرمت قائم کر دی گئی ہے. ظلم، عدوان، زیادتی ہے جس کا ہاتھ پکڑیں گے ہم، اور سچائی ہے جس کی گواہی دیں گے. اب اس میں ہماری ہمت کمزور ہو گئی، استبداد کا مقابلہ نہیں کر سکے، رخصت کا کوئی پہلو ہو گیا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جس ایمان پر ہمارے اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ یہ.
جاوید صاحب، اس میں ذرا یہ بھی وضاحت کر دیجئے گا، جو ان کا سوال تھا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر سچائی کی گواہی دینی ہے، خواہ وہ گواہی میرے دشمن کے حق میں ہی کیوں نہ ہو اور میری قوم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اب میں ایک استاد ہوں، میں ایک صحافی ہوں، میں دیگر اس میں شعبوں سے تعلق رکھتا ہوں، جب میں یہ گواہی دینے کی کوشش کرتا ہوں، جب میں کوئی تحریر لکھتا ہوں، تو مجھ پر میری قوم غداری کا مقدمہ قائم کر دیتی ہے، مجھے غدار کہا جائے گا. اور جب غدار کہا جائے گا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پھر کیا نتائج برآمد ہوں گے. تو اس سچویشن میں پھر کیا کرے کوئی شخص؟
غداری صرف سچائی کی غداری ہوتی ہے، اور وفاداری صرف سچائی کی وفاداری ہوتی ہے. آپ کی قوم سچ پر ہے تو آپ کو اس کا وفادار ہونا چاہیے، آپ کی ماں سچ پر ہے تو آپ کو اس کا وفادار ہونا چاہیے، آپ کا باپ سچ پر ہے تو وفادار ہونا چاہیے. وہ کسی جھوٹ، کسی بددیانتی، کسی ظلم اور کسی زیادتی پر کھڑا ہے تو کوئی بھی ہو، مسلمان کی حیثیت سے آپ اس کے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہوں گے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس مطالبے پر عمل کرتے ہیں یا یہ زندگی بسر کرتے ہیں تو اس کی قیمت چکانی پڑ جاتی ہے. بعض اوقات وہ قیمت پیغمبروں نے چکائی ہے، صالحین نے چکائی ہے، چکانی پڑ جاتی ہے. قیمت دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن یہ کہ اسلام کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. وہ بہرحال ہم سے یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ لا یجرمنکم شنان قوم الا اللہ تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم کوئی خلاف عدل، خلاف حق بات اس کے بارے میں کہہ دو. اے دلو، ہر حال میں تمہیں عدل اور انصاف کی بات کرنی ہے. وہ اقرب اللہ.